أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت آدم على نبينا وآله وعليه السلام سے ایک بار پھر انہیں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، توسل بھی کرتے ہیں، استمداد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع کو جو کہ نہ صرف ان کا قصہ ہے بلکہ ان کے اس قصے کے ذیل میں تربیتی نکات بھی ہیں اور انسان شناسی کے نکات بھی ہیں، کہ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کے ان نکات کو سمجھ سکیں. کل ہم نے خلقت آدم و حوا سلام اللہ علیہما کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی اور کس طرح ان کا ازدواج ہوا، پھر نظام خانوادگی اور فیملی سسٹم کا سٹرکچر کس طرح بیٹھا، فرسٹ ٹائم ایک فیملی بنی، اور کس قدر یہ ایک مہم موضوع ہے اس کی طرف بھی کل اشارہ کیا تھا. اور آج ہم یہ دیکھیں گے مزید آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کل کے سیشن سے حابیل اور قابیل کی کہانی جو ہوئی ہے، جو ماجرہ پیش آیا تھا. ایک تو ان کی خلقت کیسے ہوئی، خود ان کی خلقت میں بھی ایک ماجرہ ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور پھر جو اختلاف ان کے درمیان پیدا ہوا اس کو ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ. آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے، ایک پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاً جب حوا سلام اللہ علیہا کو آدم کے ساتھ جنت میں بھیجا گیا ان کی خلقت کے بعد، جب وہ بھی جنت آئی تھی، تو اسی وقت سے جنت میں جاتے ہی انہوں نے ایک کام یہ شروع کیا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو تزئین اور خوبصورت بنانا شروع کیا. صحیح. اور وہاں پر جو جنت میں اور بہشت میں جو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیوٹی کے جو ایکسیسریز اور ٹولز تھے، اس سے انہوں نے استفادہ کرنا شروع کیا. مثلا جو جنتی پودے تھے، گیاہ تھے، ان پودوں کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے لیے انہوں نے تاج بنایا سر کا، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کیا، زیبا بنایا. اسی طرح جو جنتی پرفیومز تھے جو خداوند نے متعال نے رکھے تھے، جنتی عطر تھے وہاں پر، وہ انہوں نے ڈھونڈا اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے معطر کیا. تو آپ دیکھیں، اس سے ہمیں یہاں پر ایک اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے خواتین کے بارے میں، جو خداوند متعال نے جو ساخت اور سٹرکچر بنایا ہے خواتین کا، وہ یہ ہے کہ خواتین کے سٹرکچر کا حصہ کیا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو زینت دینا، آراستہ کرنا. یعنی یہ ایسا نہیں کہ ان کے وجود سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، نہیں، ان کے وجود میں یہ رکھا گیا ہے، یہ ان کے وجود کا حصہ ہے، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے. جب اب آپ فطرت کا میں کوئی ڈیپ معنی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، یعنی جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں انگلش، اگرچہ شاید صحیح نہیں ہے بولنا، یعنی نیچر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحال اس کو اس کے ظاہری معنوں کو لے لیتے ہیں، یعنی وہ جو اس کا ڈیپ معنی وہی اسٹرکچر، وہ بہتر ہے، صحیح ہے. لیکن اگر ایک اور تعبیر سے استعمال کریں تو فطرت، ان کی فطرت میں یہ خدا نے رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زینت دیتی ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب زمین پر حبوط ہوا آدم کا بھی اور حوا سلام اللہ علیہما کا، تو حوا اپنے ساتھ ان بہشتی بیوٹیش یا ان بہشتی ایکسیسریز کو، جو زینت اور آراستہ کرنے کے لیے تھی، ان بیوٹی ایکسیسریز کو جنتی، ان کو زمین پر بھی لائی تھی اپنے ساتھ. صحیح ہے، روایات کے الفاظ ہی ہمیں ملتا ہے روایات کے اندر، جو جنتی پرفیومز تھے، جو جنتی آراستہ کرنے کے جو ایکسیسریز تھے، ٹول سے، وہ سب اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر لے کر آئی تھی. बस औरत का फितरत का एक ये हिस्सा और स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है। अलबत्ता ये हमें ख्वातीन को भी मद्देनजर रखना चाहिए, अगरचे ये क्या कर सकते हैं, जो ड्रामे का जो कल्चर है और नॉन इस्लामिक कल्चर जो हमारी सोसाइटीज में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है काफी सालों से, उसका एक नतीजा ये इस्लामी सोसाइटीज में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही एक नेगेटिव नतीजा है, वो ये कि ख्वातीन बाज़ औक़ात अपनी इस फितरत से, जीनत बख्शने की जो फितरत है उससे सुए इस्तेफादा करती हैं। सही है, ऐसा नहीं है कि खवातीन को इजाजत दी गई है कि वो हर जगह अपनी इस फितरत से जो है वो सुए इस्तेफादा करे और बाजारों में जाकर, मार्केट्स में जाकर, पब्लिक में जाकर अपने आप को जो है वो आरास्ता करके दिखाए। ये गलत है, ये असलन सुए इस्तेफादा है, अपनी फितरत से हटना है। दीन इस्लाम ने खवातीन के लिए एक फ्रेमवर्क रखा है, एक चार चूब रखा है कि इस फ्रेमवर्क में रहते हुए आप अपने आप को खूबसूरत बनाए, जीनत दें। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को दीन ने उसको खवातीन के लिए सेट किया हुआ है। अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को दुरुस्त फॉलो किया जाए तो आप देखें फिर कभी भी माशरों में और एंड सोसाइटीज में आपको फसाद और फाहशा देखने को नहीं मिलेगा। बस ये मद्देनजर पॉइंट रखना चाहिए, ठीक है। और अलबत्ता ये भी एक मैं पॉइंट बता दूंगा, ये कि बाज़ औक़ात यहाँ पर इफरात और तफरीत एक और जो होता है वो ये है कि अब ये फैमिली सिस्टम्स के अंदर, फैमिलीज के अंदर देखने को बहुत मिलता है कि, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस उनकी सीरत में हमें ये नजर आता है, वो क्या है कि आप देखें तारीख इस्लाम में बाज़ सहाबा ऐसे थे नबी अकरम से मोहब्बत रखने वाले, वो इतनी इबादात में और वर्शिप्स में बाज़ औक़ात अपने आप को मशगूल करते कि वो टाइम ही नहीं निकाल देते अपनी वाइफ्स के लिए, अपनी बीवियों के लिए, ठीक है। और नतीजे में फिर जब यूं ये होता था तो इन दी एंड ख़वातीन भी जो है अपने आप को आरास्ता नहीं करती थी अपने शौहरों के लिए, क्यों, क्योंकि शौहरों के पास टाइम नहीं है। सही है, तो यहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन असहाब को तौबीख करते थे कि भाई ये तुमने क्या एक्सट्रीम और इफरात का रास्ता तुमने अपने लिए चुना है, अपनी इबादत भी अंजाम दो, अपनी वाइफ को भी टाइम दो। बरअक्स भी है अलबत्ता, सही है, उलट भी बाज़ औक़ात होता है कि बाज़ औक़ात शायद बीवी इतनी मशगूल हो जाती है अपने सोशल मीडिया के अंदर और अपनी दीगर चीजों के अंदर कि वो शौहर के लिए टाइम नहीं निकालती है। सही है, बाज़ होती है इस तरह की वाइफ जो बिलाखिर कोई नामहरम तो नहीं है घर में, सही है, जब नामहरम नहीं होता है घर में तो फिर भी वाइफ जो है जिनको अपने शोहरों के लिए आरास्ता करना चाहिए अपने आप को, वो नहीं करती, लेकिन जब बाहर किसी मीटिंग में जाती हैं, किसी दावत में जाती हैं, तो वहां बखूबी अपने आप को आरास्ता करती हैं, लेकिन घर में जो है वो ऐसे कपड़े पहनती हैं कि वो बिल्कुल मासी वाले कपड़े होते हैं। सही है, अपने आप को आरास्ता नहीं करती हैं और इसी वजह से बाज़ औक़ात बाज़ शोहर बेरग़बत हो जाते हैं। सही, तो दोनों तरफ से एतदाल होना चाहिए, दोनों तरफ से बेबाक्षी, दोनों तरफ से इफरात और तफरीत नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सही, बस एतदाल का रास्ता शोहर भी अपनाए, बीवी भी अपनाए, जो खुदावंद मुताल ने शोहर को उसकी फितरी चीजें उसके अंदर रखी वो उससे इस्तेफादा करे, जो बीवी के अंदर जो फितरी चीजें बीवी उससे इस्तेफादा करे। सही, तो ये एक पॉइंट बहुत ही अहम है निजामे खानवादगी के अंदर। अच्छा, अब आते हैं मजीद इस किस्से में, हम आगे बढ़ते हैं, वो क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने जमीन पर हुबूत किया तो वो उन्होंने कहाँ हुबूत किया, जमीन पर कहाँ पर। सही, ये हमें तारीख में मिलता है अहदीस के तालीमात के अंदर, वो ये कि उन्होंने जहां पर हुबूत किया वो दो पहाड़ थे, वो दो पहाड़ आपने उन दो पहाड़ों का नाम सुना हुआ है। सही है, आदम अलैहिस्सलाम ने सफा पर हुबूत किया और हव्वा सलामुल्ला अलैहा का हुबूत मरवा पर हुआ, सफा और मरवा। यानी क्या सफा और मरवा, यानी आदम का हुबूत اگرچہ خطاب تو ایک ساتھ آیا کہ قل نہ بے تو کہ تم دونوں تم سب حبوط کرو، لیکن جب زمین پر ان کا حبوط ہوا تو آدم کا لوکیشن اور تھا حبوط کا، حوا کو لوکیشن اور تھا، آدم کو صفا پر حبوط کیا گیا، ان کا جو ہے وہ مروہ کے پہاڑ پر. یعنی یہاں پر آدم اور حوا کی جدائی ہوتی ہے، سپریشن ہوتا ہے، صحیح ہے. اور آدم نے یہاں پر پھر خدا سے دعا کی، خدایا اب میں زمین پر آیا ہوں، ملائکہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے، ظاہراً جا میں جنت کے اندر میں ملائکہ کے ساتھ تھا، تیرے جذبے میں تھا، صحیح ہے، میں اپنے بدن کی جانب اصلا میری توجہ نہیں تھی، تو مجھے وہاں پر کوئی اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن جب میں دنیا میں آیا ہوں تیرے فراق سے، تیری جدائی میں، صحیح ہے، اس عالم دنیا میں، یہ عالم دنیا جو سختی کا عالم ہے، صحیح ہے، اور ایک ہوا ہی تھی، صحیح ہے، جس سے میں مانوس تھا، اب اس سے بھی تو نے مجھے جدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ آدم کی دعا کہ خدایا تنہائی جو ہے وہ بہت سخت گزر رہی ہے، صحیح. اب یہاں پر البتہ پھر خداوند متعال نے آدم کی اس دعا کی اجابت کی، کیونکہ آدم نے، یہ روایت کے الفاظ ہے کہ آدم نے یہ جو خدا سے دعا کی اور اپنی تنہائی کا اظہار کیا، یہ شدیداً گریے کی حالت میں، رونے کی حالت میں آدم نے یہ جدائی کا اظہار کیا، صحیح ہے. تو خداوند متعال نے لطف کیا اور آدم کی اس دعا کو اجابت کی، اور پھر کہا کہ آدم اب تم جاؤ صفا سے مروہ تک، یعنی جہاں پر حوا سلام اللہ علیہا. تو آدم نے پھر صفا سے مروہ تک کا سفر کیا اور پھر وہاں پر ان کی پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، صحیح. اب کیا دیکھنا ہے ہمیں؟ اب یہ دیکھنا ہے، پھر خداوند متعال نے فرشتوں کو حکم دیا، ٹھیک ہے، آدم زمین پر آ چکے ہیں، اب آدم اور حوا دونوں صفا، دونوں مروہ پر ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر خداوند متعال نے فرشتوں کو فرمان دیا کہ تم ایک خیمہ بناؤ، صحیح ہے، ایک ٹینٹ بناؤ، کہ اس ٹینٹ میں، اس خیمے میں آدم اور حوا اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں، صحیح. اب روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر ہے، جو ان کی ایج ہے، اختلاف زیادہ ہے روایت کے اندر کہ ان کی ایج کیا تھی، لیکن جو قدر متیقن ہے، یعنی جس پر علماء نے زیادہ اتفاق کیا ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی عمر 700 سال تھی، 700 ایئرز، صحیح ہے. اب چونکہ اس زمانے میں، چونکہ پہلے انسان تھے اور پہلے انسانوں کی جو شروع کے جو انسان تھے ان کی عمر بھی زیادہ تھی، اور اسی طرح ان کی باڈیلی ساخت، صحیح ہے، ان کی باڈیلی بناوٹ چونکہ پائیدار تھی، سخت تھی، اسٹرانگ تھی، صحیح ہے. آج کل کے کھانے وہاں پر اس وقت میسر نہیں تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا نام ہے، باڈی انسان کی ویک ہو جاتی ہے، انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، صحیح. آدم علیہ السلام کا جو ٹائم تھا اس میں باڈی بہت قوی ہوتی تھی، عمر زیادہ ہوتی تھی، نتیجے میں جو اولادیں، جو فرزندان، جو بچے حوا سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے وہ بہت زیادہ تھے، کثرت اولاد، صحیح ہے، یہ ایک کام ہوا، صحیح ہے. اور ظاہر سی بات ہے چونکہ نسل انسانی، یہ فرسٹ ٹائم انسان زمین پر آیا ہے اور انسان کو زمین پر پھیلنا ضروری تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو آدم اور حوا کی عمر بھی زیادہ ہو، ان کی باڈیلی ساخت بھی قوی اور اسٹرانگ ہو، اور تاکہ پھر نتیجے میں وہ اولاد بھی زیادہ پیدا کر سکیں، صحیح ہے. نتیجے میں نسل انسانی کثیرن جو ہے وہ کثرت سے پیدا ہوئی اور پھیلنے لگی. اور یہاں پر ایک جو جالب بات یہ ہے کہ معمولاً جو بچے حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنم دیتی تھی، جنتی تھی، وہ اکثر ٹوئنز ہوا کرتے تھے، اکثر بچے حضرت آدم اور حوا کے ٹوئنز ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. البتہ یہ بھی، اس کی بھی ایک حکمت ہے جو خداوند متعال نے بیان کی ہے، روایات میں بھی ملتا ہے، علماء نے بھی اس کی حکمت بیان کی ہے، خیر اس میں ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور موضوع، صحیح. اب ہم آئیں گے دوبارہ یہاں پر اس فیملی کے اندر، دیکھیں یہاں پر ایک اور کام ہوا زمین پر آنے کے بعد. ایک تو یہ نسل انسانی پھیلی، ٹھیک ہے، اور آتے دوبارہ حبوتے، اس حبوت کے فوراً بعد جب زمین پر آئے آدم علیہ السلام، تو आदम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गिरियाजारी की, 40 दिन। क्यों? अब देखें, ये रिवायत जो कि बिहारुल अनवार में आई है, वो रिवायत ये है कि इन्ना आदम अलैहिस्सलाम बकिया अला सफा 40 सबाहन। सही है, आदम अलैहिस्सलाम जब सफा पर उनका हुबूत हुआ तो उन्होंने 40 दिन गिरिया और जारी की, बुका किया। मैंने कहा ना, आदम अलैहिस्सलाम उन हस्तियों में से है कि जिन्हें रिवायत ने कहा है कि बुकाइन आलम में से थे, वो हस्तियां जो बुकाइन, जो बहुत ज्यादा गिरिया करने वाले, उनमें से एक आदम अलैहिस्सलाम थे। सफा पर आकर, सफा के पहाड़ पर आकर उन्होंने 40 दिन, 40, देखें 40, ये 40, ये जो 40 है ना, उलमा फरमाते हैं ये भी कोई बेहिकमत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम भी देखें 40 दिन उन्होंने गिरियाजारी की, सही है, फिर उनकी इजाबत हुई उनकी दुआ की, सही है। हजरत मूसा भी 40 दिन के लिए गैबत में गए, सही है। तो ये अब उलमा, अब मुमकिन है कोई कहे भाई ये तो आप ऐसी तुक्के लगा रहे हैं, भाई तुक्के की बात नहीं, उलमा ने ये बात फरमाई है, सही है। और ना कि वो उलमा जो बिल्कुल जिसको आप कहें कि पाए के उलमा नहीं है और बहुत ज्यादा इल्मी नहीं, मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो जिसको आप कहते हैं पाए के उलमा, जो बहुत हाई लेवल के इल्म रखते हैं, जिन्होंने इल्म इरफान पढ़ा हुआ है, इल्म फलसफा पढ़ा हुआ है, सही है, आयतुल्ला बहजत के स्टेटस के उलमा की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो इन आदात को जो है वो बेहिकमत नहीं समझते, सही है। 40 दिन हजरत आदम, 40 दिन हजरत मूसा, और भी अंबिया हैं, और इसी तरह 40 दिन इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन का जो 40 है, सही है, जिसको जिसके बारे में आप जानते, खैर हम उस पर अब नहीं जाते। इन्ना आदम अलैहिस्सलाम अलस्बक या अलसफा 40 सबाहन, वो सफा, सफा पर उन्होंने वो रहे थे, बाकी रहे थे, नहीं वो वहां पर उन्होंने स्टे किया था, किस हालत में स्टे किया था सफा पर, सबाहन साजिदन यबकी अलल जन्ना। उन्होंने अब गिरिया किन चीजों पर किया, देखें वो ये रिवायत बताती है, यबकी अलल जन्ना, जन्नत पर, यानी जन्नत के फिराक पर, जन्नत की जुदाई पर, वो अला खुरूज ही मिन जिवारिल्लाह अज़्ज़ वजल, और चूंकि वो जब दुनिया में आए, जमीन पर आए, तो जन्नत में जज्बा इलाही में थे, हम जवारे परवरदिगार मुताल थे, अब जमीन पर आकर खुदावंत की हम जवारी अब उन्हें नसीब नहीं हो रही है। फनजल अलैहि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अब जिब्राइल आदम पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, फकौला या आदम, ए आदम, मालक तबकी, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों तुम गिरिया कर रहे हो, क्यों तुम बुका कर रहे हो। कौला, आदम ने फरमाया, या जिब्राइल, या जबराइल, मारी ला अब की, मैं क्यों गिरिया ना करूं, जबकि वकद अखरजनी अल्लाह मिन जिवारी व अहबतनी इला दुनिया, मैं क्यों गिरिया ना करूं जबराइल, जबकि खुदावंद ने मुताल ने अपने जिवार से मुझे खारिज कर दिया है, निकाल दिया है, और मुझे दुनिया की जानिब मेरा हुबूत किया है। सही है, देखें ये मैं और आप नहीं समझ सकते कि आदम अलैहिस्सलाम पर किस कदर ये टाइम सख्त गुजर रहा है, क्योंकि आदम जिवारे परवरदिगार में थे, जज्बा इलाही में थे, जन्नत की नेमतों से वो फायदा उठा रहे थे और उस उन उन जन्नत की नेमतों के जरिए कमाल हासिल कर रहे थे। हम नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम दुनिया में हैं और हम सब कुछ, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, सब कुछ दुनिया ही समझते हैं। हमें क्या पता जन्नत क्या है, हमें क्या पता कि जन्नत में परवरदिगार मुताल किस कदर इनायत करता है अपने बंदों को। तो ये आदम अलैहिस्सलाम ही जानते हैं कि किस कदर इनके लिए ये सख्ती है, यानी जन्नत से जमीन पर आना, जमीन और दुनिया यानी असफलुस्साफिलीन, आलम, उस आलम मलकूत से, आलम मलकूत से कर कर करके हुबूल हुआ उनका जमीन पर, और जमीन में ये जिस्म है, ये मादा है, ये मैटर है, इन चीजों के अंदर तो मुझे खुदावंद मुताल नजर नहीं आ रहा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हर चीज को खुदावंद मुताल के साथ मुर्तबित देख रहे थे, जो चीजें जन्नत में थी हर चीज में खुदा नजर आ रहा था उन्हें, हर चीज खुदा की मुतजल्ली थी, हर चीज में खुदा का जलवा था। लेकिन जब दुनिया में आए तो दुनिया में मैटर है, अलबत्ता दुनिया में भी हर चीज जो है वो खुदा से ही मजबूत है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सारी ये कि वो एक हाई लेवल का इर्तबात था खुदा से हर चीज का। यहां पर ये इर्तबात नाजिले की शक्ल में, ये बात समझना जरूरी है। देखें दुनिया में मसलन ये किताब है, ये लैपटॉप है, ये दीवार है, ये मेज है, सही, ये चश्मे हैं, सही है, हर चीज, दीवार, ईंट, हर चीज में खुदावंद मुताल की जो है वो तजल्ली होती है, हत्ता दुनिया की तमाम चीजों के अंदर, हत्ता इस मैटर में। लेकिन क्या फर्क है उस तजल्ली में? जन्नत की जो अशिया है, देखें जन्नत के अंदर जो अशिया है, जो चीजें हैं, वो भी खुदा का जलवा दिखाती हैं। दुनिया के अंदर जो अशिया है वो भी खुदा का जलवा दिखाती है, लेकिन एक फर्क के साथ। वो फर्क ये है कि जन्नत के अंदर और दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर जो अशिया है, जो चीजें हैं, जो खुदा का जलवा दिखाती हैं, जो इर्तबात हमें, जो कनेक्ट करती हैं हमें खुदा से, वो इर्तबात कायम करने में टाइम लगता है, सही है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है, सही है। आया मैं और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली मैदान में, जब हम प्रैक्टिकल कोई काम करते हैं, क्या हमारी तवज्जो खुदावंद मुताल की जानिब होती है? हम आया जब मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, क्या हम, क्योंकि मैटर है, मोबाइल इज ऑल्सो अ मैटर, ये भी जिस्म है, सही है, एक खास जिस्म है, ये भी मसलन खुदा से मजबूत है, ये भी खुदा की तजल्ली करती है, ये मोबाइल भी तजल्ली करता है मोबाइल खुदा का, सही है। क्या हम अपने मोबाइल की मसरूफियत में, मशगूलियत में, या हम जब टीवी देखते हैं या कोई और किताब पढ़ रहे होते हैं, सही है, अगर किताब पढ़ रहे होते हैं तो क्या हम खुदा को देखते हैं? क्या हम इस शय को खुदा से मुर्तबित देखते हैं? अमली मैदान में आप देखें, नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता इस तरह से, सही है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है। जन्नत में जब आप जाएंगे तो जन्नत में गफलत नहीं होगी, यही फर्क है जन्नत और दुनिया में, गफलत का फर्क। वहां पर आप जब जन्नत जाएंगे तो हर चीज को खुदा से मुर्तबित देखेंगे, यानी मुशाहिदा हमराह बा इर्तिबात, मुशाहिदा होना हर चीज का जन्नत में इर्तिबात के साथ, इर्तिबात खुदावंदी के साथ। लेकिन यहां पर अगर मैं और आप हर चीज को खुदा के साथ मुर्तबित देखना चाहें तो इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसके लिए बहुत सख्ती दरकार है। आदम अलैहिस्सलाम को अब ये फेस करना पड़ रहा है, सही है। बस आदम को ये जुदाई नसीब हुई जन्नत से, खुदावंद मुताल के जिवार से। जन्नत के अंदर जो नेमतें थी, तौहीदी नेमतें थी और दीगर नेमतें, उनसे जुदाई, सही है। अब ये बात भी हो गई। बस आदम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और रात गिरिया किया और 40 दिन और रात, ठीक है, तौबा भी की, और फिर खुदा का यहां पर अब फरमान आता है, सही है। वो जब हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हो जाती है, अब यहां पर एक और काम शुरू होता है। चूंकि देखिए दुनिया है, दुनिया क्या है? दुनिया दारुल मशक्कत, दारुल जहमा, सही है, जहमत का घर है दुनिया, मशक्कत का घर है। बस यहां पर पहला फरमान आता है खुदावंद मुताल का। वो पहला फरमान किया है, एक तो वो टेंट बनाया, फरिश्तों ने को हुक्म दिया खुदावंद मुताल कि तुम खेमा बनाओ। अब यहां पर एक और फरमान आता है, सही है। वो फरमान यह है कि खुदावंद मुताल ने कहा, ए आदम, काबा को बनाओ। आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म आता है कि तुम काबा का घर बनाओ और इसे अपनी इबादत को करार दो, इबादत का महल करार दो। और फिर फरमान आता है हज का, आदम अलैहिस्सलाम को हज का फरमान आता है। काबा बन चुका है, इबादत गाह बन चुकी है, अब हज का फरमान आता है। और यही वो मौका था, यही वो जमाना था जब से हज एक इबादत शुमार होने लगी, सही है। बस आप देखें हज का साबका क्या है, हज की हिस्ट्री क्या है, अब आप देखें। बस इस इबादत की सुन्नत रखी गई, सही है। ये पहला, ये उस फरमान के मुताबिक था। एक और फरमान आदम अलैहिस्सलाम को आया, वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम, ए आदम, अपनी मईशत के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अब तुम मेहनत करना शुरू करो। और यहां पर ये वो मौका था कि खुदावंद मुताल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिरात की तालीम दी, सही है, ज़राअत, एग्रीकल्चर, किशावर्जी, ठीक है, इसकी तालीम दी, और जो पौधे थे, प्लांट्स थे, इनके बारे में भी खुदा ने तालीम दी आदम को, ताकि आदम इस ज़राअत के जरिए अपनी रोजी फराहम कर सके। क्योंकि भाई खाने पीने के लिए तो मेहनत चाहिए, जहमत चाहिए, मशक्कत चाहिए। हम समझते हैं दुनिया आसानियों की जगह है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन खुदावंद मुताल मुख्तलिफ मुश्किलात में हमें मुबतला कर कर हमें ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि भाई दुनिया आसानियों की जगह नहीं है, ए इंसान, ए गाफिल। अमीर मोमिनीन की भी एक हदीस थी जिसमें अमीर मोमिनीन ने लोगों को खिताब किया, ए गाफिल लोगों, सही है, हम गाफिल हैं, हम गाफिल हैं इस चीज के, यानी हम भूल जाते हैं कि भाई दुनिया मुश्किलात की जगह है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर ले मेरे भाई, सही है। अब ये मुश्किलात, कोरोना वायरस और मईशत की मुश्किलात और बीमारी की मुश्किलात और जलजले का आना, ये सब इस बात की निशानदेही कि भाई दुनिया में ये होना है, दुनिया मुश्किलात की जगह है। अब मुझे बता, जन्नत में जलजला आएगा, जन्नत में कोरोना वायरस आएगा, जन्नत में कोई डिजीज होगी, जन्नत में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी? नहीं, जन्नत आसानियों की जगह है, सही है, जन्नत दारुल मुशक्कत नहीं है, दारुल जहमा नहीं है। ओके, अब यहां पर एक और पॉइंट है, जब खुदावंद ने मुताल ने जराअत और पौधों की तालीम दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, क्यों पौधों की तालीम दी, इसकी वजह यह है कि क्यों ज़राअत की, इसकी एक वजह उलमा ये बयान फरमाते हैं कि ये जो पौधे हैं और ज़राअत का जो आउटपुट है, ये सब इंसान की बॉडी के लिए फायदेमंद खुराक शुमार होती है। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो तबीयत इंसान के साथ साजगार होती है, सही है। आज की लाइफ में हम देखें, 21st सेंचुरी में हम वो गजाएं ज्यादा खाते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो गजाएं ज्यादा खाते हैं जो उनकी तबीयत के साथ साजगार नहीं होती। नतीजे में माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे सही बात नहीं करते, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ इस तरह बिहेव करते हैं। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से इंसान की तरबियत फासिद हो जाती है, बच्चे बच्चों की तरबियत का आउटपुट नहीं मिलता हमें, उसकी वजह ये है, उसकी वजह क्या है, गजा, खाना। इसी वजह से शैतान, शैतान का एक शुरू से, जब से वो जमीन पर भी आया है, उसने एक प्लानिंग जो शुरू से की हुई है वो ये कि इंसान के खानों में मिलावट की जाए, इंसान को वो खाने जो इंसान की तबीयत के साथ साजगार नहीं है, उन खानों से, उन गजाओं से इंसान को दूर रखा जाए और उसके जगह ऐसे गजाओं को रिप्लेस किया जाए जो उसकी तबीयत के साथ साजगार नहीं है, ताकि तरबियती वो, क्योंकि शैतान तरबियती आउटपुट चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि इंसान की तरबियत इलाही हो, वो चाहता है इंसान की तरबियत शैतानी हो। उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट क्या है, गजा और खाना, सही है। अब आप मुझे बताएं, वो खाना जो हमारी तबीयत के साथ साजगार नहीं है, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, जंक फूड, जंक फूड इंसान की तबीयत के साथ साजगार नहीं है, आइसक्रीम इंसान की तबीयत के साथ साजगार नहीं है, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स और केंटकी फ्राइड चिकन और अलबेक और पता नहीं क्या क्या, ये सब इंसान की तबीयत के साथ साजगार नहीं है। खूब, ये एक अलग मौजू है, एक मुफस्सल, इसके लिए खुद यहाँ पर माशाल्लाह सेशंस दरकार हैं कि खुद खाना और खुराक और गजा का जो तरबियती पहलू है वो क्या है। बस एक बात आपको कही थी कि मलाइका ने जब सजदा किया था तो वो सजदे करने का मतलब क्या था, यानी अब के बाद मलाइका और पूरा आलम हस्ती इंसान की खिदमत में आ चुके हैं, उन खादिमीन में से, इंसान के उन खादिमीन में से, मैंने कहा ना आलम हस्ती भी इंसान की खिदमत करती है, तो उन खादिमीन में से वो खादिम जो इंसान की खिदमत करते हैं इस दुनिया में, वो यही पौधे हैं, वो यही प्लांट्स हैं, वो यही सब्जा है, ये इंसान के वजूद की कुव्वतें हैं, इंसान की खिदमत गुजार हैं, सही है, इंसान की तबीयत को बहाल करते हैं। बस हयात जमीनी अब बाकायदा ऑफिशियली रस्मी तौर पर आगाज हो चुकी है, मशक्कत और जहमत के साथ, ये याद रखें। अब यहां पर एक और मैं हदीस भी कोट करना चाहूंगा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इस दुनिया के बारे में। सही, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मामूलन उनके कलाम में आप देखें दुनिया को बहुत मजम्मत करते हैं, दुनिया को बहुत कंडेम करते हैं। अलबत्ता कौन सी दुनिया को? वो दुनिया जिससे मैं और आप लगाव रखते हैं, जिससे मैं और आप अपना दिल बांधते हैं, उस दुनिया को। लेकिन वो दुनिया जो मज़रअतुल आखिरा है, वो दुनिया उसकी कंडेमनेशन कभी नहीं की है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 83 में आइए देखें, फरमाते फइन्न दुनिया रनिकुन मशरबुहा रदिगुन मशरअुहा यूनिकु मंजरुहा, देखें बेबाक्षी, फइन्न दुनिया रनिकुन, दुनिया की जिंदगी कुदूरत के साथ है। सही है, फइन्न दुनिया रनिकुन, दुनिया की जिंदगी कुदूरत के साथ है। मशरबुहा रदिगुन, दुनिया का पानी कीचड़ वाला पानी है, खालिस पानी नहीं है। सही, मशरुहा यूनिको मंजरुहा व यूबिको मखबरुहा गुरूरुन हाइलुन व ضوء آفلٌ व ظل زائلٌ व سِنَادٌ مَائِلٌ। बहुत ही खूबसूरत हदीस, ये तो खुद अरबिक ग्रामर के एतबार से बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बलागत के एतबार से बहुत ही आली कलाम है, और हदीस के मानी के एतबार से भी बहुत ही खूबसूरत है। अब इसका तर्जुमा मैं शुरू से करता हूँ, दुनिया की जिंदगी कदूरत या कुदूरत के साथ है, उसका पानी खालिस नहीं है, कीचड़ की तरह है, बल्कि कीचड़ है। अब ये मोमिनी नहीं कह रहे कीचड़ की तरह है, बल्कि कह रहे कीचड़ है। दुनिया के मनाजिर फरेबंदा है, धोखाबाज हैं, दुनिया का अंजाम और सर अंजाम खतरनाक है, दुनिया की जीबाई और खूबसूरती फरेब देने वाली है, लेकिन ऐसी फरेब देने वाली जीबाई है जो कभी भी दवाम नहीं रखती, एक ना एक दिन ये जीबाई खत्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर नूर है, लेकिन ये नूर गुरूब की हालत में है। दुनिया के अंदर साया है, लेकिन ऐसा साया जो नाबूद हो जाएगा। दुनिया के अंदर सुतून है, लेकिन ऐसा सुतून जो मुसलसल खराबी की तरफ जा रहा है। देखें ये खूबसूरत तशबीह जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दुनिया की दी है। वाकयन अगर मैं और आप गफलत से बाहर निकल आए, देखें मैं एक बात बता दूं, जब आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह खुदा हमें जन्नत नसीब करे, सही है कि यार ये हमने दुनिया में क्या किया। सही, अगरचे ये एहसास हमें जन्नत में जाने से पहले होगा, कहां पर? खुद हिसाब किताब में, यौमुल कियामा में, क्योंकि यौमुल कियामा का एक और नाम है यौमुल हसरत, हसरत का दिन। वहां पर मैं और आप जब गफलत से बाहर आकर देखेंगे कयामत के दिन, तब हमारे अंदर एक हसरत होगी, एक आरजू होगी, खुदा या हमें दुनिया में वापस जाने की तौफीक अता फरमा, ताकि, लेकिन क्या होगा, खुदा कहेगा भाई टाइम खत्म हो चुका है। हत्ता मौत के बाद भी, मौत के बाद आलम बरजख में और कयामत में आने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये आरजू करेंगे कि हमें दुनिया में वापस लेके आ खुदाया, अब हम टाइम जाया नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब ये लोग वापस दुनिया में आएंगे, फिर वापस वही गफलत का शिकार हो जाएंगे, फिर वापस वही गलतियां करेंगे। अगर गलतियां नहीं करनी है, गलतियां खत्म करनी है, तो यही वो टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं, मौत के बाद यानी आसान नहीं है। मगर ये कि खुदावंद मुताल की तरफ से लुत्फ हो और वो इज़्ज़त दे अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को और उलमा को, इज़्ज़त दे शुहदा को, इज़्ज़त दे कि वो हमारी शफाअत कर सके। खूब, अब आखिरी पॉइंट आज के सेशन के लिए, वो ये कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर जब उनका हुबूत हुआ, तो यहां पर मलाइका भी आदम के साथ दुनिया में आए थे। कितने मलाइका? रिवायात में मौजूद है कि 70,000 मलाइका ने आदम के साथ जमीन पर आए, आदम के साथ हुबूत हुआ, अब मैं हुबूत का लफ्ज मलाइका के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। आदम ने हुबूत किया, जमीन पर आए मलाइका, 70,000 मलाइका आदम के साथ आए। क्यों? ताकि आदम के साथ मानूस रह सके, आदम के पास कोई हो जिससे वो मानूस रह सके, क्योंकि जन्नत से वो निकल चुके हैं, उनको कोई चाहिए जिसके साथ वो उन्स बरकरार रख सके। तो ये खुदा ने उनके साथ एक लुत्फ शामिल हाल किया। अलबत्ता उलमा यहां पर एक तफसीर करते हैं कि मलाइका की हकीकत क्या है, यानी ये 70,000 मलाइका दर वाके दर हकीकत वो सिफाते अखलाकी इंसान थे, वो सिफाते अखलाकी इंसान, सही है। और इंसान की कुवाए वजूदी, इंसान के जो वजूद की जो कुव्वतें हैं, जो पावर्स हैं, ये दर हकीकत मलाइका यही थे। बस दो चीजों की तफसीर किया उलमा ने कि ये मलाइका इंसानी सिफात, अखलाकी सिफात थी इंसान की, और इंसान के वजूद की पावर्स थी ये मलाइका। अलबत्ता एक और यहां पर बात उलमा फरमाते हैं कि ये वही मलाइका थे जिन्होंने सजदा किया था आदम के सामने, कि जिनको बाद में फिर जमीन पर इनके साथ आए थे। बस एक नतीजा हम लेंगे, मैंने आपको 2 या 3 दफा ये बात तकरार की कि ये किस्सा दर हकीकत हमारा किस्सा भी है, ये फकत आदम का किस्सा नहीं है, ये आदम का किस्सा बेउनवान इंसान अव्वल का किस्सा है, और ये किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के बेउनवाने किस्साए बनी आदम का भी किस्सा है, मेरा और आपका भी किस्सा है। इस एतबार से देखें और इस बात को देखें जो अभी मैंने आपके सामने कही कि मलाइका इंसान के हमरा थे, हमरा आए आदम के साथ, और ये मलाइका सिफात अखलाकी इंसान और कुवाए वजूदी इंसान थे। बस मैं और आप इस जिंदगी में तन्हा नहीं है, वी आर नॉट अलोन, लोनली और लोनलीनेस के अंदर भी हम लोनली नहीं है, तन्हा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मलाइका इसी वक्त मेरे और आपके साथ हमरा है, साथ है। किस लिहाज से? उन सिफात के लिहाज से। रिवायत के अंदर भी है कि जब इंसान एक अमल साले अंजाम देता है, एक नेक अमल अंजाम देता है, एक अमल हसना अंजाम देता है, तो हर अमल के साथ साथ इंसान एक मलक को भी ईजाद करता है। बस मैं और आप जो माह रमजान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, खुदा की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह जो अमल साले मैं और आप अंजाम दे रहे हैं, मसलन आमाल लयाली कदर अंजाम देते हैं, कुरान की तिलावत रोजाना करते हैं, नमाज अव्वल वक्त अगर मैं और आप रोजाना पढ़ते हैं, दुआएं बजा लाते हैं, या अली या अजीम अंजाम देते हैं, तो हर अमल के साथ एक मलक को ईजाद कर रहे हैं। और ये मलक ऐसा मलक होता है जो कभी भी हमसे जुदा नहीं होगा, हमेशा ये मलक हमारे साथ होगा, ता अबद ता कियामत। बस आप देखिए खुदावंद मुतआल ने किस कदर मुझे और आपको अपनी इनायात से लुत्फ किया है, किस कदर खुदा की इनायात हमारे शामिल हाल है। अब क्या मुझे और आपको जेब देता है कि मैं और आप अपनी उम्र जाया करें? एक एक लम्हा इस वक्त मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट शुमार होता है, एक एक लम्हा हमारे पास, एक एक लम्हा खुदा ने मौका दिया है कि हम मलाइका को ईजाद करें, इससे बड़ी नेमत क्या चाहिए। हम बजाय इसके कि अपने आप को जिनों से दोस्ती करें और क्या नाम है, गैर इंसानी मखलूकात के साथ दोस्ती करें, जैसे जिन हो गया, वो भी ऐसे जिन जो अशरार हैं, जो बुरे जिन हैं, सही है। पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर पाया जाता है, खास तौर पे खवातीन के अंदर, कि वो जाती हैं बांग्लादेशी बाबाओं के पास और चाहती हैं कि अपने आप को जिन से मुर्तबित करें, अपने बॉडी के अंदर जिन को लेके आए। ये बहुत ही गलत है, उलमा फरमाती है शिर्क है शिर्क। खुदा ने आपको मौका दिया भाई, आप अमल साले अंजाम दें और मलाइका को ईजाद करें, फिर मलाइका से दोस्ती करें, उनसे अपनी इमदाद लें। क्यों इतनी 40 40 रोज जो है चिल्ले काटते हैं ताकि जिन मेरे अंदर आ सके? क्या जवाब देंगे कयामत के अंदर? बस आखिरी पॉइंट में ये बयान कर दो तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हम सलाम पेश करते हैं हजरत जिब्राईल को। हजरत जिब्राईल आदम के हुबूत के बाद जमीन पर हमेशा वक्तन फवक्तन आते थे आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। ठीक है, अब एक वक्त ऐसा है कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल नहीं आ रहे थे। काफी एक लंबी मुद्दत आ गई, काफी फासला जमानी आ गया था कि जिब्राईल नहीं आ रहे थे आदम के पास। और आदम इस सूरत हाल में बहुत ही गम और अंदोह का शिकार हो गए थे, यानी ही वॉज मिसिंग जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जब एक दिन जिब्राईल आए आदम के पास तो आदम ने उनसे फरमाया कि ए जिब्राईल, ये अय्याम मेरे लिए बहुत सख्त गुजरते हैं जब आप मेरे पास नहीं आते। एक तरफ से आदम को दुनिया की सख्ती भी देखना पड़ रही है, दूसरी तरफ से जिब्रेल जो हमेशा उनके साथ उनके पास आते थे वो भी अब नहीं आ रहे, वो भी अब कम आते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे ऊपर इस वक्त बहुत ही संगीनी तारी हो रही है, आई एम फेसिंग अ हार्ड टाइम राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, क्या करूं मैं। जिब्रेल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया और ये फरमाया, देखिए ये जिब्रेल का जवाब है जो रिवायत के अंदर है। जिब्रील फरमाते अलैहिस्सलाम कि जब भी तुम्हारे ऊपर गम और अंदोह तारी हो, जब भी तुम सख्तियों को महसूस करो, तो तुम ये जिक्र अपनी जबान पर जारी करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम। फिर फरमाया कि ये जिक्र पढ़ो, इस जिक्र से इंसान, अब यहां पर उलमा फरमाते हैं, देखें उलमा क्या फरमाते हैं, देखिए ये नुस्खा किसने दिया है, जिब्राईल ने, ठीक है। और ये नुस्खा गम व अंदो और सख्तियों में पढ़ने का जो है, ये जिक्र जो कि ये विर्द फकत नहीं है, ये जिक्र आदम अलैहिस्सलाम को दिया, यानी मुझे और आपको भी दिया है। उलमा ये फरमाते हैं अगर इंसान, आज का इंसान अपनी जिंदगी की सख्तियों में इस जिक्र को पढ़े और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ भी मुतवज्जे हो, तो नतीजे में ये इंसान जिब्राईल के साथ मुर्तबित हो जाता है। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इनायत खुदा के इज़्ज़त से इस इंसान को भी शामिल हाल होने लगती हैं। बस ये वो अज़कार, ये वो जिक्र है जो इंसान को गम के अय्याम में, सख्ती के अय्याम में तस्कीन देती हैं। ये वो हकीकी पेन किलर्स हैं हमारे लिए। अगर हम अपनी रूह को इन अज़कार से सुकून दे सके, तस्कीन दे सके, फिर हमें अपनी बॉडी के लिए पेन किलर्स लेने की शायद जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब रूह आराम होती है, जब रूह के अंदर सुकून होता है, तो नतीजे में बॉडी भी जो है वो सुकून की हालत में आ सकती है। उसके लिए कोई सख्ती पर सख्ती नहीं होगी, हर सख्ती आसानी होगी। आप देखें बहुत सारे उलमा की जिंदगियों में ये पाया जाता है, आज भी ऐसे उलमा मौजूद हैं जिनकी सीरत में हमें ये मिलता है कि मसलन जब खुदा ना खासा उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है और डॉक्टर्स कोई बीमारी के वो लाहिक हो जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका ऑपरेशन करना होगा, तो बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जो ऑपरेशन के वक्त बेहोशी की दवाई कबूल नहीं करते। वो डॉक्टर से कहते हैं मैं होश नहीं रहना चाहता हूं, आप मेरे होश की हालत में मेरा ऑपरेशन करें। और आप देखें होश की हालत में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दर्द महसूस नहीं होता, होश की हालत में ये अज़कार और ये जिक्र पढ़ रहे होते हैं। बस आप देखें ये पॉसिबल है, इसका मतलब मेरे और आपके लिए भी पॉसिबल है। सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, सिर्फ गफलत से बाहर आने की जरूरत है। इंशाअल्लाह खुदा हमें तौफीक दे के हम इन लयालियुल कदर में जो इस वक्त दरपेश हैं, जो कि 23 की रात भी दरपेश है, खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदाया हमें लैलतुल कदर को दर्क करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया लैलतुल कदर की इस रात जो आने वाली है 23 के शब, खुदाया हमारी वो तकदीर लिख जो जिसका अंजाम आकिबत बखैरी हो, जिसका अंजाम नुसरत इमाम जमान अलैहिस्सलाम हो, जिसका अंजाम हमारी अपनी पहचान हो, इंसान शनासी हो, जिसका अंजाम, जिस तकदीर का अंजाम कमाल इलाही से मुत्तसिफ होना हो। इंशाअल्लाह आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इस फकीर के लिए भी, इस फकीर के लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करें इन लयाली कदर में। इंशाअल्लाह मैं भी आपके انشاءاللہ دعا گو ہوں انشاءاللہ، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل